मैंने तो विभीषण के विषय में पहले से ही हनुमान से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली है। विभीषण को मैं जानता हूं, क्योंकि बाली ने भी विभीषण के विषय में हमको बहुत अच्छी बातें पहले से बता रखी है। बाली और रावण तो परिचित थे ना, तो उस समय में बाली ने भी हमको कहा था कि विभीषण बड़ा श्रेष्ठ और धर्मात्मा पुरुष है। मेरे अंदर भी यही बात थी महाराज की, विभीषण को शरण में लेना चाहिए, परंतु मैंने देखा कि सारी बात मेरे पर आ जाएगी। मैंने देखा आपके हृदय का ये भाव, जितने बानर बेचारे किष्कंधा छोड़कर आए, स्त्री पुत्र छोड़कर आए, भाई बंधु छोड़कर आए, इनको कम से कम आपकी शरणागति का ज्ञान तो होना चाहिए। ये आपका भाव आज सब सुन लिए, बहुत अच्छी बात है। आइए महाराज अपने विभीषण के सामने चलकर उसको बोलते हैं। ऐसा करके राम जी और विभीषण जी, राम जी और सुग्रीव जी विभीषण को आकाश से उतारने के लिए अपने शिविर से बाहर आकर के एक स्थान पर खड़े होने का प्रयत्न करते हैं।
पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्।
शरणागत वत्सल भगवान की विभीषण के प्रति की हुई अनुकंपा को सभी बानरों ने बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। सुग्रीव महाराज के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक शत्रु सेना का और प्रधान शत्रु का भाई युद्ध के अवसर पर भगवान की शरण में आता है और भगवान को चाह चाह करके भी हम लोग विपरीत बात बोलते हैं, फिर भी भगवान ने अपनी शरणागत वत्सलता नहीं छोड़ी। कैसे भगवान दयालु है। ऐसा तो कोई पापी जीव है भी नहीं। हम लोगों ने जीवन में कोई पाप किया है तो वो हमने आत्म विनाश के लिए किया, हमारे पतन के लिए किया। लेकिन भगवान को मारने के लिए या भगवान का नाश करने के लिए हमने पाप नहीं किया, लेकिन भगवान तो उनको मारने वाला भी यदि उनकी शरण में आता है उसके लिए भी भगवान कितने कोमल हैं और कितने भगवान दया करने वाले हैं। इसी कारण से संतों ने, भक्तों ने, भगवान के प्रिय जनों ने भगवान की इस दयालुता का उपयोग किया। भगवान की इस कमजोरी का बड़ा लाभ उठाया, उठाना भी चाहिए। किसी की कमजोरी का लाभ लेना हो तो भगवान की कमजोरी का लाभ लें। और भगवान शरणागति के अवसर पर बड़े कोमल हो जाते हैं, सब बात भूल जाते हैं। याद दिलावे तो याद और नहीं करते। रहती न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। भगवान ने कहा कि कोटि विप्रवद ला गई को, करोड़ों ब्राह्मण के भी मेरे मारने के बाद मेरे सामने वो आ जाए, शरण में हो जाए, उसको उसका पाप मैं समाप्त कर देता हूं। इसलिए हम लोग भगवान के सन्मुख नहीं होते, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरे छोटे 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 पापों को याद कर करके और भगवान के शरण नहीं होते, ये बड़ा भारी पाप है। यदि हमारे पापों में इतनी शक्ति हो कि वे भगवान की तरफ लगने नहीं देते तो फिर भगवान की शरणागति का उपयोग कब होगा? हमारे पाप और भगवान की शरणागति, भगवान की क्षमाशीलता, इन दोनों में हमारे पापों में वो ताकत नहीं है जो भगवान की शरणागत वत्सलता में है। इसलिए अपने पापों से डरना नहीं चाहिए। संतों ने एक उदाहरण दिया कि जैसे अपने शरीर में कपड़े वगैरह पहन रखे और अचानक आग लग जाए और पास में यदि जलाशय हो तो तत्काल पानी में कूद जाता है, क्यों? उसको मालूम है कि पानी में जाती आग समाप्त हो जाएगी। जैसे उस पानी के तालाब पर विश्वास है, ऐसे ही हमको देखना चाहिए कि जहां हम पाप की वृत्ति पैदा कर रहे हैं वहीं भगवान की शरणागत वत्सलता भी है। हम भगवान के शरण भी हो सकते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की शरणागत वत्सलता पर पूर्ण विश्वास करके और अपने को भगवान के शरण हो जाना चाहिए। जब विभीषण को भगवान ने अभय प्रदान कर दिया और विभीषण को कह दिया गया कि हे राक्षस राज, आइए आप राम से मिलने के लिए आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं, तो विभीषण ने कई देर तक नीचे जमीन की ओर देखा और नीचे भगवान को भी देखा। अनेक भक्तों के साथ घिरे हुए भगवान को देखकर विभीषण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वो धर्म पुरुष विभीषण नीचे जमीन पर आया। साथ साथ में उसके चारों राक्षस भी आए और आते ही वो भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा, उनके चरणों में गिर गया। और विभीषण ने बड़े धर्म के साथ दरे बड़ी धार्मिक बात कहते हुए कहा कि हे महाराज, हे दीन बंधो, मैं रावण का छोटा भाई हूं, मेरा नाम विभीषण है, रावण के द्वारा अपमानित हुआ हूं। मेरे मन में विश्वास है कि आप प्राणी मात्र को शरण देने वाले हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मैंने अपने लंका में सारे मित्रों का, परिवार का, धन का, राज्य का, जीवन का, सब का विश्वास हटा करके केवल आपके चरणों पर मैंने अपना विश्वास रखा है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। राम जी ने पीठ थपाते हुए कहा कि बोलो विभीषण, राक्षसों का क्या बल है वहां, रावण का बल क्या है, अबल क्या है, बलाबल के विषय में सुना हुआ। देखो भगवान खूब बढ़िया परीक्षा कर रहे हैं, देखेंगे ये क्या बोलता है। तब विभीषण जी कहने लगे कि देखो महाराज, मैं साफ साफ बात कहूंगा, अब एक तरफ देखना, वाल्मीकि रामायण का जो ये प्रसंग है, ये तो खैर सभी प्रसंग बड़े रोचक हैं, सरस हैं और भगवान की पावन कथाओं को बताने वाले हैं, पर इन प्रसंगों में आप देखना कि राम जी का कैसा स्वभाव है और रावण का कैसा स्वभाव है। राम जी हैं वो रावण के गुणों को सुनते हैं तो कोई घबराहट नहीं होती, और रावण जब राम जी की महिमा सुनता है, शत्रुओं की सेना की महिमा सुनता है, तब देखना कितना वो नाराज होता है। विभीषण कहता है कि महाराज, इस संसार के अंदर देवता, गंधर्व, राक्षस, उरग, पक्षी ये सब मिल जाए, रावण उनसे मारा नहीं जा सकता, रावण अवध्य है, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दे रखा है। केवल रावण बलवान हो इतनी बात नहीं, रावण से छोटा और मुझसे बड़ा एक भाई कुंभकर्ण है, वो कुंभकर्ण तो महाराज युद्ध के अंदर किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बड़े बड़े पर्वतों को वो पत्थर की छोटी सी कंकरी समझता है, पर्वत फेंको तो वो कंकरी समझ के एक खास ईंट फेंक देता है। प्रहस्त नाम का जो उसका सेनापति है, उस सेनापति ने तो कैलाश पर्वत के ऊपर नंदी मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। और महाराज जब रावण का बेटा इंद्रजीत अपने भुजाओं के अंदर चमड़े के अस्त्र पहन लेता है, छाती पर पूरी कवच पहन लेता है और अपना यज्ञ करके और धनुष बाण लेकर जब युद्ध भूमि में उतरता है, उस समय महाराज कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। वो अंतरहित होकर ऐसे अमोघ बाणों की वर्षा करता है कि उसका सामना करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार महोदर, महापार्श्व, अकंपन इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े सेनापति हैं, ये महाराज समुद्र के समान अक्षोभ भी हैं, वायु के समान अनिरुद्ध हैं। ये देखो, ये सारे राक्षस महाराज 10 कोटि सहस्राणि हैं, माने ये 10,000 करोड़, ये इतने राक्षस हैं, लंका में रहते हैं, इनका खाना पीना मांस भक्षण वगैरह है और इन सब के साथ युद्ध करना है। राजा रावण इन सब का स्वामी है। रावण ने तो देवताओं के भी अभिमान को दूर कर दिया है, इस प्रकार का ये बलशाली राजा है। विभीषण के वचनों को सुनकर के भगवान ने यूं मन में विचार किया, विचार करने के बाद कहा कि विभीषण जी, जितनी जितनी सेना आपने बताई, सेनापति बताए, ये तो मुझे पहले से भी मालूम है, परंतु मैं लंका में चले जाने के बाद आपने प्रहस्त वगैरह का नाम लिया है, इन सबको मैं मारूंगा, ये मेरी निश्चित प्रतिज्ञा है, सत्य है। रावण चाहे पाताल में चला जाए, चाहे रसातल में जाकर छिप जाए, चाहे ब्रह्मा जी की गोद में बैठ जाए, चाहे इंद्र के पीछे छिप जाए, वो मेरे इस बाण से बच नहीं सकता है। और रावण को यदि अपने पुत्रों सहित भाइयों सहित युद्ध के अंदर मैं न मार दूं, तो मैं तीनों भाइयों की सौगंध खा के कहता हूं कि अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर के विभीषण बड़ा हर्षित हुआ, भगवान के चरणों में अपना शीश रख करके और कहा कि महाराज, मैं राक्षसों के वध में आपकी पूरी सहायता करूंगा, आपकी सेना का एक मुझे भी अंग मान लीजिए, हर दृष्टि से आपकी सहायता के लिए मैं तैयार हूं। लंका के प्रदर्शन में, लंका के इस विनाश में मैं आपका बाण बनकर के आपके साथ रहूंगा। विभीषण की वाणी सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, लक्ष्मण समुद्र से जल लाओ, महान बुद्धिमान विभीषण का हम अभी यहां अभिषेक करते हैं, राक्षस को हम मान प्रदान करते हैं, हे राक्षसराज, तुमने हमारा मान बढ़ाया, हम तुम्हारा मान बढ़ाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी ने विभीषण का अभिषेक किया, सब वानर वहां बैठे हुए हैं, एक राजा ने एक भावी राजा के मस्तक के ऊपर तिलक किया और तिलक करने के बाद सब बंदरों ने वाह वाह साधु साधु तालियां पीटी। हनुमान और सुग्रीव दोनों ने विभीषण से पूछा कि विभीषण जी, आपका काम तो हो गया। सुग्रीव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, मैं राम जी की शरण में आया था, मेरा काम राम जी ने पहले किया, अपना काम बाद में। ऐसे ही विभीषण का भी भगवान ने काम पहले किया है, उसको लंका का राजा बना दिया। अतएव दोनों ने विभीषण से पूछा कि विभीषण जी, हमारे सामने और तो कोई समस्या नहीं है, इतना विशाल ये सागर है, सागर से कैसे पार किया जाए। हमारे पास सेना भी बहुत है और सागर का मार्ग भी बहुत लंबा चौड़ा है। जल्दी से जल्दी हमको ये सागर बनाना है, कैसे हम समुद्र को पार करें, इसके विषय में आपके पास क्या युक्ति है? विभीषण जी ने कहा, हे सुग्रीव जी, हनुमान जी, सागर के विषय में भगवान राम को चिंता करने की जरूरत क्या है? ये सागर तो भगवान श्री राम का पूर्वज है, उन्हीं के वंश से पैदा हुआ है। इनके वंश में एक सागर के पुत्र हुए, उन्होंने ही तो ये सागर बनाया है। राम यहां आज्ञा देवे, अथवा राम सागर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात राम यदि सागर से ही पूछे कि मुझे लंका के वहां चलना है, आपका क्या इस विषय में विचार है, तो ये सागर स्वयं ही मार्ग दे देगा, सागर स्वयं अपनी बात बता देगा। हनुमान और सुग्रीव दोनों राम लक्ष्मण के पास आए और विभीषण के वचन भगवान श्री राम को सुनाए। भगवान को ये वचन बड़े अच्छे लगे। भगवान ने कहा, हे सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, देखो विभीषण हमको कितने अच्छे मिले हैं। ये जिस प्रकार से अपने वंश के विषय में जानते हैं, ऐसे हमारे वंश के विषय में भी कितना गहरा ज्ञान रखते हैं। और ये सुग्रीव तो बड़े भारी पंडित हैं ही, तो आप सब विचार कर लो कि सागर के पास जाकर मुझे क्या कहना चाहिए, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप लोगों का विचार ही मेरे काम आएगा। इस प्रकार से भगवान ने सबके ऊपर ये बात छोड़ दी। तब सुग्रीव और लक्ष्मण ने भगवान से निवेदन किया कि महाराज, विभीषण के ये वचन किसको अच्छे नहीं लगेंगे, सागर का कुछ पता नहीं है। जब तक सागर का हम लोग निग्रह न कर ले, या जब तक इसके ऊपर पुल न बना ले, तब तक लंका हमको प्राप्त होने वाली नहीं है, चाहे इंद्रादि देवता भी हमारा साथ क्यों न दे। शूरवीर विभीषण के वचन बड़े श्रेष्ठ हैं, अतः वो समय आ गया है, ज्यादा अब अपने को देरी करने की जरूरत नहीं है। सागर से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करके हमारी सेना को लंका में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में जो भी सागर हमको कहे, वैसा अपने को अविलंब कार्य करना चाहिए। इतना कहकर के भगवान सागर के भगवान से इतना कहा तो भगवान ने कहा, लाओ भाई कुशासन लेके आओ। वहां घास फूस का आसन बनाया और उस आसन के ऊपर भगवान विराजमान हो गए। सागर के सामने धरना दे दिया और कह दिया कि भाई हम खाएंगे न पिएंगे, जल्दी से जल्दी आप हमारा काम बनाओ। तो उस समय राम जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई वेदी में अग्नि की शोभा होती है। इधर क्या हुआ, रावण के वहां कि रावण ने देखा, रावण के गुप्तचर शार्दूल ने देखा कि सुग्रीव की बहुत बड़ी सेना है, वो सेना सागर के तट पर आ गई है। तो वह गुप्तचर रावण का बड़ा विश्वसनीय गुप्तचर था, वो दुरात्मा शार्दूल बड़ा घबराया हुआ तेजी से दौड़ा दौड़ा राक्षसराज रावण के पास आकर बड़े वेग से आकर कहने लगा, महाराज क्षमा करें, बांदरों की रीछों की बहुत बड़ी सेना लंका का नाश करना चाहती है। अगाध और अप्रमेय सागर के समान ये बांदरों की सेना भी एक विशाल सागर बन गई है। सागर के पास जाकर देखें तो बांदरों का सागर है। राम और लक्ष्मण ने बड़ा पुरुषार्थ किया है, इन दोनों ने सुग्रीव के साथ मित्रता करके कितने बांदर इकट्ठे किए हैं। हे महाद्युते, ये यदि सागर को पार करके लंका में आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बलम चाकाश मावृत्य सर्वतो दश योजनम। महाराज ये जब आकाश में चलते हैं उड़ते हैं तो वहां 40 कोस में इनका घेराव होता है। 40 कोस की भूमि तक ये बंदर उड़ते रहते हैं। 40 कोस तक इनका बहुत बड़ा पड़ाव भी पड़ा हुआ है। हे महाराज, आप बहुत जल्दी अपने दूतों को वहां पर भेजिए, वे दूत जाकर कुछ काम करें, या तो सुग्रीव को जाकर कुछ समझाएं, या सुग्रीव को सांत्वना दें, या कुछ लोभ दें, अथवा कोई आपस में भेद कराना तो भेद करा दें। दंड का यदि सामर्थ्य हो तो देख लीजिए, लेकिन ये बांदरी सेना किसी प्रकार से ये इस समय में दंड के योग्य नहीं लगती है। इनके ऊपर आक्रमण करें तो ये आपसे किसी प्रकार से कम नहीं रहते हैं। शार्दूल के वचनों को सुनकर के रावण थोड़ा व्यग्र हुआ और व्यग्र होकर के उसने कहा, सुख को बुलाया। सुख को बुला करके कहा कि हे सुख, तुम यहां से सुग्रीव के पास जाओ। सुग्रीव के पास जाकर मेरा ये संदेश उसको सुनाओ और उसको बहुत मीठी वाणी में, अपनत्व से भरी हुई वाणी में ऐसा उसको कहो कि जैसे रावण के हृदय में प्रेम का सागर लहराता हो, ऐसे तुम बहुत प्रेम के साथ बोलना कि हे सुग्रीव, आप तो बहुत बड़े महाराजाओं के कुल में पैदा हुए हुए हो। आप ऋक्षराज वानरराज ऋक्षराज के पुत्र हो। आप बाली के अनुज हो। आपका रावण ने क्या बिगाड़ किया है? रावण की तो ऋक्षराज के साथ, बाली के साथ, आपके साथ बड़ी मैत्री रही है। रावण के साथ तुमको युद्ध करने में क्या लाभ होगा और यहां से चले जाने में तुमको क्या नुकसान होगा? खैर, तुम यदि राम की तरफ से आए भी हो तो भी रावण बोलता है कि मेरा हृदय बड़ा विशाल है सुग्रीव, मैं तुमको अपना भाई मानता हूं, तुम मेरे भाई हो, मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति वैसा ही है। परंतु सुग्रीव, यदि रावण ने सीता का हरण किया है तो सीता तुम्हारे क्या लगती है? सीता तो रावण राम की स्त्री समझ करके लाया है। तुम तुम्हारे किष्किंधा में आराम से रहो, किष्किंधा में अपने परिवार के साथ रहो, नहीं तो इस लंका की तरफ तुम्हें आक्रमण करने से क्या लाभ है? मैं तो तुम्हारे बहुत लाभ के लिए बोलता हूं। और यदि आपको कुछ इस विषय में लंका की तरफ से कुछ सहायता चाहिए तो मैं सहायता देने के लिए तैयार हूं। जितनी सहायता, जितने आप हमसे लेना चाहो सब तैयार। आप वापस लौट जाओ, क्योंकि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहने वाला है। देखो, देवों के साथ, गंधर्वों के साथ यदि युद्ध होता हो तो राम उनका साथ न लेकर तुम्हारा साथ लेकर क्या लाभ ले रहे हैं, हमें यह भी समझ में नहीं आता। देवता गंधर्व भी आज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ कर सकते, तुम बांदरों तुम क्यों आए हो? और हे बांदरों, देखो, मेरा तो बैर देवताओं गंधर्वों के साथ सबके साथ है। वो कोई आज राम का साथ नहीं देते मेरे भय से, तो तुम क्यों राम का साथ देते हो? अभी समय है, तुम चले जाओ और तुम्हारे बांदरों की सुरक्षा भी रहेगी। महाराज, अभी जाता हूं। उसी समय में वो राक्षस आकाश में उड़ करके और एक पक्षी बन गया। पक्षी बनकर के आकाश में गया। आकाश में जा चलते चलते जब सागर को पार करने लगा तब वहां बांदरों ने आकाश में उस पक्षी को देखा। पक्षी को देख करके और उसको गंभीर उसको देखा आकाश में बंदरों ने, और उधर उस पक्षी ने सामान्यतया घूमते घूमते सुग्रीव का जो शिविर था वहां आकर सुग्रीव को कहने लगा वो सब बातें जो बातें रावण ने कही थी। ये बातें बंदरों ने सुन ली। उन बंदरों ने चारों तरफ से घेर करके उस सुख को बुरी तरह से मारना पीटना चालू किया। और उसको कभी मुक्कों से मारते हैं, लातों से मारते हैं, उठा उठा के पटकते हैं और आकाश में उड़ा करके नीचे जमीन पर पटकते हैं, नीचे जमीन पर लेकर के उसको आकाश में फेंकते हैं। ऐसे उसको बुरी तरह से पीड़ित करने लगा। सूख चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, अरे बानरों, मैं तो रावण का दूत हूं, दूत को मारा नहीं जाता है। हनुमान जी कहां गए? हनुमान जी भी तो दूत बनकर के हमारे यहां आए थे, हमने हनुमान को ऐसे थोड़ा ही मारा था, तुम हमको बुरी तरह से मार रहे हो, बचाओ हमको बचाओ। यस्तु हित्वा मतं भर्तु, जो दूत अपने स्वामी का भाव लेकर शत्रु सेना में आता है तो शत्रु सेना को अपने भाव बताकर दूत को विदा कर दिया जाता है, पर दूत को मारा नहीं जाता है। जो दूत स्वामी के कहे बगैर ही कोई काम करता है उस दूत का वध होता है, लेकिन जो अपने स्वामी का काम करने के लिए आता है वो अवध्य होता है। ये बात राम जी ने सुनी। राम जी ने कहा बंदरों से, बंदरों इसको मारो मत और इसको छोड़ दो। तो उसी समय में वो वापिस छोटा हो गया और कहने लगा, सुग्रीव, महाराज रावण के आदेश पर आपने क्या विचार किया? मैं यहां से लंका में जाकर राजाधिराज लंकेश्वर श्री रावण से क्या कहूंगा? उस समय में सुग्रीव जी ने बड़े जोश में आकर के और सुख को कहा, रावण से बोल देना कि मैं कोई रावण वावण को नहीं जानता हूं, मेरी और तुम्हारी कभी मित्रता नहीं रही, मैं कभी तुम्हारे पर कृपा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने कोई मेरे पर उपकार नहीं किया है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई स्नेह भी नहीं है, मैंने कभी मित्र दृष्टि से तुमको देखा भी नहीं है। तुम राम के शत्रु हो तो मेरे भी शत्रु हो। राम ने यदि बाली को मारा है तो मैं तुमको मारने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भाई बंधु ज्ञाति ज्ञाति सबको मारूंगा। हे रजनी चरेश, इस लंका में यदि तुमको सुखपूर्वक रहना है तो या तो तुम राम की सीता को लाकर हमारे सामने दे दो, नहीं तो तुम्हारी लंका को हम भस्म कर देंगे, लंका को हम सदा के लिए समाप्त करेंगे। राम के बाण जब तक तूणीर से न निकले तभी तक रावण तुम्हारी जिंदगी है, और जब उनके बाण तुम्हारे पर निकलने लगेंगे उस समय में कोई तुमको नहीं बचा सकेगा। चाहे तुम सूर्य की गोद में चले जाओ, चाहे तुम पाताल में चले जाओ, चाहे हिमालय की किसी गुप्त गुफा में जाकर बैठ जाओ, कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। तीनों लोकों में चाहे पिशाच, चाहे राक्षस, चाहे गंधर्व, चाहे देवता, चाहे असुर, कोई क्यों ना हो, तुम जो है उससे बच नहीं सकते, राम से बच नहीं सकते हो। तुमने और पाप किया सो तो किया, लेकिन बेचारे बूढ़े गीतराज को तुमने मारा है, इसका बदला तो मैं लेकर के रहूंगा, क्योंकि तुमने सीता को बचाने वाले तुमको पाप से बचाने वाले जटायु पर आक्रमण किया है, वो हम कैसे सहन कर सकते हैं? तुम्हारे मेरी इतना ही बल था तो राम और लक्ष्मण के रहते हुए तुम सीता को ले जाते, तुम्हारे में इतना ही बल था तो तुम राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार करके सीता को ले जाते तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुमने उनको छल करके सीता का जिस प्रकार से हरण किया है इसका फल तो आज तुम्हें मिले बिना संसार में लोग इस पाप से कभी सावधान नहीं हो पाएंगे। तुमको मारकर सारे संसार को आज हमें सावधान करना है। उसी समय में अंगद वहीं थे। अंगद ने कहा, हे सुख, तुम गुप्तचर हो, तुमको ये बात हमारी तरफ से साफ साफ रावण से कहनी चाहिए कि जो महाराज सुग्रीव ने बात कही है उस बात का हम सब प्रत्येक बानर पालन करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम इस बात से सहमत नहीं कि सुग्रीव रावण को मारे। रावण को मारने के लिए सुग्रीव के दास हम बहुत लोग हैं, सुग्रीव को या राम को या लक्ष्मण को वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है। तायम दूतो महाराज है, महाराज ये सुख मुझे दूत मालूम नहीं देता, ये गुप्तचर है। दूत में और गुप्तचर में अंतर होता है। दूत वो होता है जो राजा के द्वारा भेजा हुआ होता है, गुप्तचर वो होता है जो चालाकी से अंदर घुस करके हमारा ही बन करके हमसे बात करके और हमारा भेद वहां पर भेजता रहता है। गुप्तचर तो छोड़ने लायक होता है नहीं, दूत तो छोड़ने लायक होता है। गुप्तचर को पकड़ने के बाद उसको तो दंड दिया जाता है, इसलिए हमारी दृष्टि में इसको मारना चाहिए। तब जो है कई बंदर आए, उछलते आए, कोई कैसे आए, वे सब के सब जो है सुख के पीछे पड़ गए। वे सब सुख के पीछे पड़े और विचार करने लगे कि जो है सुख को किस प्रकार से यहाँ हम लोग बुरी तरह से मारे। वो जोर जोर से सुख चिल्लाया, चिल्लाते हुए सुख ने लुप्यते में बलात् पक्षौ विद्यते में चाक्षणी, अरे बचाओ रे बचाओ, कोई कोई मुझे बचाओ, देखो मेरे पांख हैं, इनको छीना जा रहा है, मेरी आंखों के अंदर ये बानर तीखे तीखे नाखून डाल डाल कर मेरी आंख फोड़ रहे हैं। ओ देखो जिस रात से मैंने जन्म लिया है और जिस रात तक मैं मरूंगा तब तक के सारे पाप आपको भोगने पड़ेंगे।